یہ ہے 11288 کا کہاں تک لا 15 نمبر کے رجسٹر میں 114 پیج ریکارڈ چلا ہے چھوڑ دیجیے آکاش سنہاسن اس دھرتی پر آ جا رہے کون کہا بچوں نے کہا کہ اونچی اسٹیج چھوڑ دے اور نیچی اسٹیج میں ہمارے ساتھ آ جا ارے یہ بھی کوئی بات ہوئی کوئی راجا گدی پہ بیٹھا ہوا اونچے سنگھاسن پہ اور اسے کوئی کہے گا کہ اوپر سے اتر کے نیچے میرے پاس آ جا
یہاں راجا کی تو بات ہے نہیں یہاں تو کس کی بات ہے باپ اور بچوں کی بات ہے بچے جب دھول میں پڑے ہوئے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں میرے کو گود میں آگے اٹھا لے نیچے تو آنا ہی پڑے گا شو بھگوان ہوا آج ایسے بھی کہہ سکتے ہیں گیتا کے بھگوان شو بھگوان ہوا آج گیتا کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ گیتا کو ہی کھنڈن کیا ہے کیا گیتا ماتا ہے اور ماتا جب کھنڈت کی گئی تو ضرور کھنڈت کرنے والے نے ماتا کے راجیہ کو سویکار نہیں کیا تو ودیشوں میں گاڈ مدر کو مانتے ہیں یا گاڈ فادر کو مانتے ہیں پھر گاڈ فادر کو مانتے ہیں کہتے ہیں لیکن گاڈ کے روپ میں اس کو مانتا نہیں دیتے گاڈ مدر میری کہتے ہیں کہ کرائسٹ ماتا تو مانتے ہیں لیکن گاڈ کے روپ میں گاڈ کے ساتھ اس کو مانتا نہیں دی گیتا کا نام لیا جاتا ہے سارا مدار اس پر ہے کہ گیتا شری کرشن ساکار دیوتا نے نہیں گائی ہے کیا شوٹنگ پیریڈ میں کون ہے کرشن کی سول کرشن کی سول کون بچہ تو ہے برہما بابا شیو بابا کا تو بچہ ہے لیکن ہے تو کرشن کی سول نا تو شوٹنگ پیریڈ میں گیتا ماتا کا بھگوان کون گیتا ماتا کون اور گیتا پتی بھگوان کون ساکار اسٹیج میں رہنے والا یا نراکاری اسٹیج میں رہنے والا ساکار اسٹیج میں رہنے والا گیتا کا بھگوان ساکار اسٹیج میں رہنے والا گیتا کا بھگوان کیسے ہوگا اگر ساکاری اسٹیج میں رہنے والا گیتا کا بھگوان چھوڑ بھی دے آکاش سنگھاسن اوپر سے چھوڑ کے نیچے آئے گا تو ہم کو کیا کرے گا ہم کو بھی ساکار بنائے گا دے ابھیمانی بنائے گا کہ آتما ابھیمانی بنائے گا کیا بنائے گا آتما ابھیمانی بنائے گا ساکار بھگوان ساکاری اسٹیج میں جو خود ہوگا دے ابھیمانی کی اسٹیج میں وہ ہم کو بھی ساکاری بنائے دے گا تو واستو میں گیتا کا بھگوان گیتا پتی بھگوان وہ تو نشو موہا اسمتی لبدھا بنانے کے لیے آتا کہ تم آتما ہو تم دیہ نہیں ہو یہ اسمتی پکی ہونے سے کیا ہوگا کہ میں آتما اور میرا باپ پرماتما آتمک اسٹیج ہو گئی تو کام کرودھ لوہ موہ اہنکار سب خلاص ہو جاتے تو کوئی ساکار اسٹیج میں رہنے والا گیتا کا بھگوان نہیں ہو سکتا اور وہ گیتا سنائے کر کے گتی سدگتی نہیں کر سکتا کرشن نے راجیوگ نہیں سکھایا ہے یا کرشن دوارا آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم کی استھاپنا نہیں ہوئی ہے کب ہوتی ہے استھاپنا سچی کرشن کی تو بات ہی نہیں سچ میں تو استھاپنا होती नहीं, संगम में होती है। लेकिन संगम में भी कृष्ण वाली सोल का जो व्यक्तित्व है उसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं होती। क्या प्रूफ इस बात का? क्या प्रूफ? ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले ब्राह्मण तो हुए, लेकिन देवता कोई नहीं बना, बीच में ही शरीर छूट गए। तो ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा द्वारा या कृष्ण की सोल द्वारा देवी देवता सनातन धर्म स्थापन हुआ। अगर कोई कहे कि देवी देवता सनातन धर्म स्थापन हुआ या हो चुका है, तो फिर देवी देवता कौन? देवी देवताओं का तो राज्य होता है, उसमें तो महाराजा महारानी चाहिए। वो महाराजा महारानी कौन? कोई कोई मनमत पर कह देते रहे कि दादी और दीदी। अब वहां तो कोई विदुर और विधवा बनता ही नहीं। तो यहाँ की कोई बात नहीं है, अभी देवी देवता सनातन धर्म स्थापन नहीं हुआ है, अभी भी घर घर में रावण राज्य चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी भी बुद्धि में ये बैठा हुआ है पक्का कि गीता का भगवान कृष्ण है। अर्थात भगवान का अगर कोई प्रैक्टिकल स्वरूप है इस संसार में, तो तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में वो प्रैक्टिकल स्वरूप ब्रह्मा का ही बैठा हुआ है। माना कृष्ण वाली सोल का ही साकार स्वरूप भगवान के रूप में बैठा हुआ है। तो ये बात रंग है, क्योंकि ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। जो धर्म पिताएं होते हैं वो निराकारी स्टेज वाले होते हैं। पिता माना बीज, बीज रूप स्टेज होनी चाहिए। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, बुद्ध का फोटो देखो, आंखें चढ़ी हुई हैं, चेहरा चमकता हुआ है, देखने से ही मालूम पड़ता है कि आत्मा जैसे परम धाम में बैठी हुई है। क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, तो क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा का एक भी फोटो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में फोटो खींचे होंगे, लेकिन एक भी फोटो ऐसा नहीं जो निराकारी स्टेज वाला। इसलिए मुरली में कहा माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। तो फिर गीता का भगवान कौन? गीता माता की रग रग को पहचानने वाला, और उस गीता माता जो श्रेष्ठ रचना है, उस रचना की पहचान देने वाला कौन? जरूर बाप ही माँ के अम्मा की पहचान देता है। इसलिए अद्वैतवाणी में बोला, तुम बच्चे मम्मा को नहीं ढूंढ सकेंगे, ये तो बाप ही तुम बच्चों को बताएंगे कि मम्मा कहाँ कार्य कर रही है। तो कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते, कृष्ण का चित्र ही अलग है और निराकार का रूप अलग है। निराकार का रूप कैसा होगा? निराकारी स्टेज वाला होगा। तो कौन सा निराकारी स्टेज वाला रूप है? बिंदु? अरे कृष्ण की सोल बिंदु नहीं है क्या? कृष्ण की सोल भी तो बिंदु है, तो शिव की भी सोल बिंदु है, कीड़े मकोड़ों को भी सोल बिंदु है, तो इसमें अंतर क्या हुआ? अंतर कुछ बताया ही नहीं। तो अंतर तो जरूर है, स्टेज की बात है, निराकारी स्टेज और साकारी स्टेज। वो है परमात्मा, उनको कोई शरीर नहीं है, माना देह अभिमान नहीं है। पुकारते ही है, हे भगवान रूप बदल कर आओ। क्या भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है? और जब इस धरती पर रूप बदल कर आता है तब क्या है? ओरिजिनल रूप में तो वह बिंदु है, नाम शिव है, लेकिन जब इस धरती पर आते हैं तो जरूर किसी न किसी शरीर के द्वारा आवेंगे। वो कोई जानवर का तो रूप नहीं धारण करेगा, कौन? परमात्मा। मनुष्य ने तो जानवर का रूप दे दिया है, ये क्या बात हुई? कौन सा जानवर का रूप दे दिया है? हाँ, बैल, कच्छ, मच्छ, घोड़ा, यानी क्या क्या दिखाई दिए? अरे बैलों में, घोड़ों में कहीं भगवान आएगा? जानवर में क्यों आएगा? जानवरों को सुधारेगा क्या? मुख्य सृष्टि तो मनुष्यों की सृष्टि है, मनुष्यों की सुधरने से सब सुधर जाएंगे, मनुष्यों के बिगड़ने से सब बिगड़ जाते। मनुष्य का स्वभाव संस्कार सुधर जाए तो सब सुधर जाए, और मनुष्य का स्वभाव संस्कार बिगड़ जाए तो सब जीव जंतु बिगड़ते। प्रूफ, जंगल में जितने जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या मनुष्य के संसर्ग संपर्क में आने वाले पशु पक्षी ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्यों के संग का रंग लगता है। तो परमात्मा को, मनुष्यों को सुधारने की जरूरत है या जानवरों को सुधारने की जरूरत है? मनुष्यों को सुधारेगा ना? कह देते कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वाराह अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने ये रूप धरे तो नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है, और जिसको रचनी नहीं है उसकी बुद्धि में नई दुनिया की प्लानिंग भी पूरी नहीं आ सकती, उसका पूरा नक्शा उसकी बुद्धि में नहीं आ सकता। और जिसको रचनी होगी उसकी बुद्धि में उसकी पूरी प्लानिंग और नक्शा भी आएगा। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा, क्या कहा? ब्राह्मण कुल रचा, देवताओं को नहीं रचा। ब्रह्मा और कृष्ण में तो बहुत फर्क है, ब्रह्मा अंतिम जन्म में और कृष्ण पहले जन्म में। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहां भी नहीं लिखा हुआ है क्या कि कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए? ब्राह्मण तो रचे गए ब्रह्मा के मुख से, लेकिन कृष्ण के मुख से देवता नहीं रचे गए। कृष्ण देवताओं का रचयिता नहीं है, वो देवता बनता है लेकिन बनाता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तो ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। जिसकी बुद्धि में हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर के आत्माओं को ज्ञान देते हैं, क्या है? तो निराकार बिंदु, लेकिन ज्ञान देने के लिए साकार में आता है, लेकिन ज्ञान देना ही सब कुछ नहीं है। निराकार परमात्मा साकार में आकर के ज्ञान तो देता है, लेकिन पतितों को पावन बनाने के लिए कौन चाहिए, साकार चाहिए या निराकारी रूप चाहिए? है निराकार स्टेज वाला चाहिए, साकार में चाहिए लेकिन स्टेज कौन सी हो, निराकार स्टेज, क्योंकि निराकार से निराकार का संग लगेगा और साकार से साकार का संग लगेगा। व्यक्ति व्यक्ति कृति सब निराकारी स्टेज वाली। ज्ञान लेने वाली तो आत्मा है, तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माँ पिता गुरु गुसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। तो देहधारी जो मत देंगे वो देह अभिमानी की मत होगी, और निराकार जो मत देंगे वो देह अभिमानी की मत नहीं हो सकती। अभी समय तमेव माता च पिता तमेव, इस पर समझाया जाता है कि माता कौन है और पिता कौन है, और वो एक ही माता और पिता कैसे हैं, इस पर समझाया जाता है। ये महिमा एक ही गाई जाती है, कैसे एक की महिमा का हुई है, तू ही माता है तू ही पिता है, ये एक की महिमा कैसे हुई है, ब्रह्मा में शिव आया तब एक ही माता एक ही पिता हुआ, ब्रह्मा माता भी हो गई पिता भी हो गया, पिता का कोई कार्य किया, पिता का काम होता है आदि में बीज बोना, ज्ञान का बीज बोया ब्रह्मा के थ्रू, अंत का कार्य होता है वर्षा देना, सड़क का वर्षा दिया नहीं दिया, तो काम नहीं तो नाम कैसे। तो एक की महिमा गाई जाती है, तमेव माता च पिता तमेव, तो वो एक रूप कौन सा है, विष्णु एक कहेंगे या चार कहेंगे है, विष्णु एक हुआ या चार हुए, एक हुआ, और चार हाथ उसमें देते हैं सहयोगी आत्माओं की निशानी, वो सहयोगी है, मुखिया तो जरूर उनमें एक ही होगा चलाने वाला। तो एक की महिमा गाई जाती है, फिर माता पिता के दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक कैसे, माता स्त्री का रूप होती है और पिता पुरुष का रूप होता है, तो फिर ये तो दो अलग अलग हो गए, एक कहाँ हुआ, गॉड इज वन कहाँ हुआ, ये एक की महिमा कहाँ हुई, एक में प्रवेश करके जिसमें प्रवेश करके माता बनी ज्ञान दिया, वो स्वरूप तो अलग हो गया और वो शरीर ने शरीर छोड़ा, माता बन के ज्ञान दिया तो वो एक व्यक्तित्व तो एक पर्सनालिटी अलग हो गई ना, एक अलग हो गई। अच्छा वो माता का रूप हुआ, फिर पिता
पिता ने उसने आके ज्ञान दिया
तो वो बिंदु, आखिर बिंदु ही पिता हो गया वर्षा देने वाला। लेकिन मुरली बोला निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए, प्रैक्टिकल में विश्व की बात सही चाहिए या सिर्फ निराकारी वर्षा ज्ञान का ही चाहिए, नहीं ज्ञान तो अधूरा नहीं दिया, ऐसे नहीं कहेंगे प्राइमरी की आई ए बी सी डी की नॉलेज अधूरी है,
निराकार में ज्ञान
साकार में माता पिता का पाठ चल रहा है वो तो ठीक, लेकिन यहाँ बताया कि माता पिता तो फिर अलग हुए या एक हुआ, पर्सनालिटी व्यक्तित्व एक है या अलग, लेकिन अभी माता पिता के रूप में दे रहे हैं तो अलग अलग हैं या एक हैं? नॉलेज एक, नॉलेज से मतलब थोड़े ही है, व्यक्तित्व अलग अलग हुए ना। यहाँ तो कहा महिमा एक की गाई जाती है, अच्छा
शंकर
किसी को मिला, वर्षा किसी को वर्षा मिला, मनुष्य मनुष्य से कोई विष्णु देवता बना? विष्णु देवता कोई नहीं बना, घर में लड़ाई झगड़ा सबके हो रहा है। अंतिम स्टेज का ये गायन है कि जिसमें दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर एक हो जाएं, कोई संस्कार स्वभाव की टकराहट न रहे, तो जरूर कोई पहला सैंपल ऐसा निकलता जरूर है जो आधा अंग स्त्री और आधा अंग पुरुष, यानी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। अब उसको विष्णु कह दो, अर्धनारीश्वर कह दो, महालक्ष्मी कह दो या लक्ष्मी नारायण कह दो। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गुसाई हैं, इन सभी की मत पर चलना छोड़ो, मैं ही आकर के तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ, मेरे में सभी की मत समाई हुई, इसलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है। परमपिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे। जरूर क्यों लगाया? कोई समझते हो कि ब्रह्मा कुमार कुमारी मत दे रहे हैं? शिव बाबा तो नहीं है साकार में, प्रैक्टिकल में, या दीदी दादी दादा है मत देने वाले हैं, लेकिन नहीं, अभी अभी मैंने कभी संगम युग में प्रैक्टिकल में मत देने वाला जरूर परमपिता परमात्मा है। ये परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वो सभी मनुष्य मत देते हैं। वो सभी में कौन कौन आ गए? वो सभी में दुनिया भी देहधारी धर्मगुरु आ गए, बाकी ब्राह्मणों की दुनिया के हाँ सभी में सब आ गए। जितने भी मनुष्य हैं वो सब इस समय देहधारी है। कॉन्स्टेंट लगातार आत्मिक स्टेज वाला कोई है नहीं, वो सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वो भी आत्मा आदर्श द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं, और जो परमात्मा पायस होगा वो किसी के नाम रूप में फंसने वाला नहीं होगा, तो इस राज को नहीं जानते। जो किसी के एक के नाम रूप में फंसा हुआ होगा, दो चार के नाम रूप में फंसा हुआ होगा, वो सारे विश्व का कल्याणकारी नहीं हो सकता। जो सारे विश्व का कल्याणकारी होगा, विश्व पिता होगा, वो किसी एक में बंधकर नहीं रह सकता। जैसे कहते हैं कि बुद्ध पार निर्वाण गया, बुद्ध तो शरीर का नाम है, वो शरीर तो कहाँ जाता नहीं है। वह कहेंगे फलाना बैकुंठ गया, वो नाम तो शरीर का ही लेंगे ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जानते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है, आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती है, आते सब परम धाम से। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में शरीर नहीं जाता है, शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम नहीं पड़ता है। तो जब कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, तो बुद्ध कैसे पार निर्वाण जाएगा? बुद्ध में ताकत ही नहीं जो पार निर्वाण जाए, उसको भी ले जाने वाला कौन है? जो सदा सदा शिव सोल है, आत्मा है, जो देह के बंधन में फंसने वाला नहीं है। तो तुम जानते हो सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने सत्य को में पार्ट बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है, बल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत नहीं होती है, माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती, खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बनाए देती। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, सुनो, ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल विश्व का मालिक बनता है, है? एक तरफ मुरलियों में कहा कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ये दो दो बातें क्यों कही? शिव ज्योति बिंदु वो आत्मा तो नहीं राज्य करती है, लेकिन जिसने प्रवेश करती है वो स्वरूप जरूर विश्वनाथ कहलाता है। सभी माता पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत उस रूप में आ जाती। किस रूप में? जो विश्व का मालिक बनता है। ये महिमा है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आके आगे जाकर के महिमा गाते रहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्कर लगा करके आई है, अब ये अंतिम जन्म है। वो अंतिम जन्म घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता ही नहीं है। क्या? पर दीदी दादी दादाएं क्या कहेंगे? अगर तुमको ही मिलता है तो फिर उनको है? उनको मिलता है कि नहीं? पर अच्छा अच्छा मतलब मिला हुआ है। तो जो मिला हुआ है वो विश्व का मालिक है या हुआ है? तो नहीं मिला ना। विश्व का मालिक तो सर्व संबंधों से हमारे कनेक्शन में नहीं आया। जो कहते हैं राजाओं के लिए क्या कहते हैं, प्रजा क्या कहती है? तुम ही माई बाप हो। किसको कहती है? राजा को। तो ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिला नहीं है, मिलता ही नहीं। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। कितना नशा रहना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार ऐसे हैं जिनमें आने से खुशी को दबाए दिया जाता है। इन विकारों ने सारी दुनिया की खुशी को दबाए दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर के मिला है। क्या घर बैठे मिल गया? अच्छा फिर? अरे
वो खुद आए हुए हैं और उनके पापा का
तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है। भारत में आए हैं, भारतवासियों को तो भारत ही घर है ना। क्या कहा? भारतवासियों का घर कौन सा है? जैसे शिव बाबा का घर परमधाम, अथवा जिस तन में आते हैं वो शिव का घर, तो शिव का भी घर तो हमारा भी घर। हम किसके दिल पर चढ़ के बैठेंगे? है हमारा तखत कौन सा होगा? बाप का दिल तक तो हमारा घर कौन सा हुआ? अपने घर में सब घुस के बैठते हैं। तो भारत में आए हैं तो भारतवासियों का तो घर भारत ही हुआ ना, तो तुमको घर बैठे बाप आकर मिला। कोई गुजरात की अकेले की बात नहीं है, तो बहुत ज्यादा फूल के घर गौटा हो जाओ। परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में है, जरूर एक घर में आएंगे कि अनेकों घरों में आ जाएंगे है? इसका प्रूफ है, वो उन्हें 108 का प्रूफ है, हो जाएगा तब मान लिया जाएगा। ऐसे तो नहीं कि सर्वव्यापी हो गया, जब 108 को पहचाना नहीं तो जरूर क्या समझ लेंगे, सर्वव्यापी हो गया। दूसरा पे वो आएंगे तो जरूर पतितों को आकर पावन बनाएंगे, क्या ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाई के वापस चले जाएंगे। ये नहीं कहते कि हे पतित पावन आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, क्या कहते हैं, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो आने का अहम ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पतितों को आकर पावन बनाना। क्यों, जाकर के पावन नहीं बना सकते, ज्ञान सुनाया जाए। वो गीता ज्ञान हम सुनते रहें, दूसरों को सुनाते रहें और पतितों से पावन बनते रहें और दूसरों को बनाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। पतित पावन तो एक ही है, पतित पावन अनेक, देहधारी धर्मगुरु नहीं हो सकते। अगर हो सके होते तो राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट इस दुनिया में सब की क्या स्टेज होती, सब की ऊंची स्टेज होती, लेकिन सब इस दुनिया में नीचे गिर गए। दुनिया समझती है कि कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा आया हुआ है। जो पतित पावन ज्ञान का सागर है उनका नाम वास्तव में रुद्र है। क्या बात हुई, कभी कहते हैं मेरा नाम वास्तव में शिव है, और यहाँ क्या बताया,
रुद्र भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है,
शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ या कृष्ण ज्ञान यज्ञ या नारायण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, हाँ, उनका नाम वास्तव में रुद्र है, रौद्र रूप धारण करने वाला। हाँ, गांव का भी नाम पड़ा रुद्र आयन, आयन माने घर और रुद्र माने रुद्र, रुद्र का घर। वही बड़ी से बड़ी भूल है। क्या बड़ी से बड़ी भूल है, तो उस रुद्र को नहीं जाना जो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। जब ये समझे कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है तो खुशी का पारा चढ़ जाए। क्या कहा, कोई हद के ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सृष्टि का रचयिता नहीं है, सारी सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती है, दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं, प्रैक्टिकली ब्राह्मण नहीं है। कैसे, मुरली में पूछा उन ब्राह्मणों से पूछो, अगर तुम अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म बदन। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी बाप का परिचय दे, अंतर बताओ। कृष्ण का तो परिचय नहीं देना है, उन जैसा कामन मनुष्य तो हो नहीं सकता। किन जैसा? उनको तो सब जानते हैं। जिसको सब जान ले वो कामन हो गया, और जिसको कोई न जान सके वो अनकामन हो गया। सिर्फ कोई कहते हैं राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई कहते हैं फिर द्वापर में ठोक देते हैं। कृष्ण को बैकुंठनाथ भी कहते हैं, और कोई कृष्ण को कहते हैं द्वापर में हुआ। इसका मतलब या तो द्वापर ही बैकुंठ हो गया, लेकिन सत्ययुग और त्रेता युग इसमें ही रामकृष्ण देवताओं का राज्य होता है, द्वापर में इनका राज्य नहीं होता। सत्ययुग त्रेता को ही बैकुंठ कहें या द्वापर कलयुग को बैकुंठ कहें, सत्य को त्रेता को बैकुंठ कहें। वास्तव में संगम युग का वो पीरियड जिसमें कि वो गॉड फादर प्रत्यक्ष होता है, और पहला जन्म जिसमें बाप का वर्षा मिलता है, वही बैकुंठ है। और सत्ययुग त्रेता के दूसरे जन्मों को बैकुंठ नहीं कहेंगे, पैराडाइज नहीं कहेंगे, जन्नत नहीं कहेंगे। वो फर्स्ट क्लास जन्नत या पैराडाइज नहीं है। तो ये भी मुझे कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ज्ञान उठा सकते हो। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया? बल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपन को पतित समझते नहीं है। कौन? आसुरी संप्रदाय। अगर उनसे कहो कि तुम पतित हो तो उनको क्रोध आ जाएगा। सड़क को तो वो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ हम नाम मात्र कहते हैं, ये भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी होते हैं। तुम जब समझाते हो तब उनकी आंखें खुलती हैं। माया ने आंखें उनकी बंद कर दी। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी नहीं जानते, और हम भी पहले नहीं जानते थे। ये तो समझ सकते हैं, अन्य धर्म तो बाद में आए हैं, देवताओं के समय वो धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुखी ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, न कि बच्चे को दुख देने के लिए बच्चा मांगता है। ये तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए। सत्ययुग त्रेता में तो दुख देते नहीं थे। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारे के नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सत्ययुग में तो ऐसे नहीं होता है, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं क्या? कि बाप उन बापों जैसा है या कोई विशेष बात है? वो बाप क्या करते? सुख के लिए बच्चा पैदा करते हैं, सुख ही देने की कोशिश करते हैं, परंतु गलती क्या करते? विकारों में ढकेल देते। और ये पारलौकिक बाप कभी ऐसी मत नहीं देगा कि तुम शादी कर लो। जब कह दिया एक बार शादी बर्बादी, तो बाप ऐसा डायरेक्शन कैसे दे देंगे कि तुम शादी कर लो, बेकारों में गिरो। तो तुम्हारे में नंबर वार समझते, तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है और कोई का नहीं होता। ऑपरेशन हो जाएगा तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं होगा तो 84 जन्म लेने वाले तो पक्के देवता नहीं बन पाएंगे। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की आंखें ठीक हो जाती हैं, कोई की थोड़ी खराबी रह जाती है, थोड़ी चौथाई कला आधी कला, उतने फिर जन्म भी कम हो जाएंगे। कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं, आंखें बिल्कुल खराब हो गई तो क्या होगा, अंधे हो गए, फेल हो गए, फिर त्रेता में जन्म लेना पड़े। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, भी क्यों लगा दिए है? कोई कोई ऐसे भी हैं जिनको मिला नहीं है, और कोई कोई तो मिल गया है, सब त्रिनेत्री बन गए। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, उस नेत्र से क्या देखेंगे? परमात्मा बाप को देखते हैं कि ये परमात्मा बाप है, और फिर दुनिया को
ये माँ है,
और देखते हैं कि मैं कौन, हु एम आई, मैं आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ इस रंगमंच पर, वो भी देखते हैं। तो अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, मिल रहा है कि मिल गया? मिल रहा है, फिर भी क्यों लगाया? तुमको भी मिल रहा है, हैं? और को भी मिल रहा है, और तुमको भी मिल रहा है। तो बुद्ध रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती है, दैवी चलन नहीं होती है, माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, और दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण। एक तरफ और दूसरी तरफ क्या पाला बनी हुई है, है? पाला है, वो भी उस्ताद कहेंगे, रावण भी उस्ताद। हाँ, बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता हूँ, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ, सुखदाता। क्यों भाई, ये ढोल पीटने की क्या जरूरत है, मैं सुखदाता हूँ नामी ग्रामी हूँ, भूल जाते तो ढोल पीटने से याद आ जाएगा क्या? जरूर कोई बच्चे हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते। किस बात पर? कि बाप बाप सुख देने वाला है या दुख देने वाला है? धर्मराज का रूप पकड़ता है तो दुख देने वाला हुआ या सुख देने वाला है? वो भी अपने हिसाब से सुख देने के लिए करता है कि हिसाब किताब पूरा हो जाए तो जल्दी ये भी स्वर्ग में पहुंच जाए। अच्छा, फिर तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को स्वर्ग में पहुंचाए दे। हाँ, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ, सत्युग त्रेता में सब सुखी होते हैं। अभी तो कलयुग है, सत्युग और कलयुग का कितना वास्ट डिफरेंस है, सुख देने वाला और है और दुख देने वाला और है, ये किसी को भी पता नहीं। रावण राज्य कब आरंभ होता है ये किसी को पता नहीं। जब ये नहीं पता कि दुख देने वाला कौन है,
और तब से उसकी सत्ता शुरू होती है, तब से सत्ता शुरू होती है द्वापर से। द्वापर में इब्राहिम पहली आसोल उतरती है तो वो रावण है सर, फिर कहां की बात है? जरूर ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बात है, इस संगमी की दुनिया में ही रावण भी है तो राम भी है। ये है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है? कोई तो बिल्कुल ही जर्जरीभूत अवस्था में है जो कुछ भी नहीं समझती। जितना मनुष्य पढ़ते हैं तो उतने मेहनत भी आते हैं, दबदबा रहता है हमारा। फिर गुप्त दबदबा है, आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे और औरों को समझाएंगे। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। आंतरिक खुशी नहीं होगी, नारायणी नशा नहीं होगा तो औरों को भी नारायण बनाने की सेवा नहीं करेंगे। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर के गर्म हो जाते, क्यों? राजाओं का नाम सुन के गर्म क्यों हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि कांग्रेसी बनते ही हैं मोस्टली आर्य समाजी, और आर्य समाज वाले राजाई को और देवताओं को मानते ही नहीं। उन्हें तो पसंद है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, क्योंकि पिछाड़ी के राजा ऐसे बन गए थे। कैसे? परंतु ये भूल गए हैं कि आज सनातन देवी देवताएं राजा रानी होते थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले, किस पीढ़ी राजभाग लो, पिछाड़ी के राजा ऐसे बन गए थे। कैसे?
राजा रानी को नहीं मानते,
जो राजा रानी को नहीं मानते। परंतु तुम विद्वान आचार्य भी नहीं जानते, वो परंतु विद्वान आचार्य भी इस बात को नहीं जानते कि सत्यनारायण की इस कथा कौन सी है। है तो मशहूर कथा, गीता का कितना आडंबर बनाया हुआ है, लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। कौन सी गीता? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया की सारी बातें हैं, क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को बता दिया, इतने बड़े विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना छोटा सा संसार है। उस छोटे से संसार के अंदर रावण राज्य भी है, रावण भी है, राम राज्य भी है और राम भी है। तो गीता का कितना आडंबर बनाया हुआ है और लाखों बैठ सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं कि गीता सुनाने वाला कौन। वो क्या समझते हैं? गीता सुनाने वाला कृष्ण। अब इन विचारों को कौन सुझा करे? ये तुम बच्चों का काम है, वो भी बहुत थोड़े हैं जो औरों को सुझा कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं दीती सो दीती देखो, ड्रामा में ऐसा था, अब आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो, इतने समय में हमने क्या धारणा की। कोई 25 वर्ष के, कोई 30 वर्ष के हैं, कोई एक मास का, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। तो ये वंडर है ना, क्या ये एक मास वाले और 7 रोज वाले 15-20 वर्ष वालों से आगे बढ़ रहे हैं? या तो कहेंगे कि माया प्रबल है, ड्रामा पर ही रखेंगे। परंतु ड्रामा पर हमेशा के लिए रहने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। तीसरा पेज, क्योंकि समझते हमारे भाग्य में नहीं है। तो ड्रामा के ऊपर भविष्य की बात नहीं छोड़नी चाहिए, जो बीती सो ड्रामा। तुम अब लकी स्टार्स हो,
तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टाफ से की जाती है। क्या ऊपर के स्टाफ कितने हैं? कहते हैं 9 लाख सितारे हैं। तो 9 लाख सितारे क्यों कहे गए? जो संसार में चमकेंगे, अभी गुप्त हैं। क्यों? कि जब तक ज्ञान सूर्य उनकी बुद्धि में चमक रहा है तब तक वो गुप्त रहते हैं, और जब ज्ञान सूर्य गुप्त होता है तब वो सितारे चमकते हैं। चंद्रमा चमकता है, तो तुम सृष्टि के सितारे हो, तो अपनी अपनी यादगार वो सितारा पहचान में आना चाहिए कि मेरी यादगार वो सितारा कौन सा है। वो सितारे तो सिर्फ रोशनी देते हैं, स्थूल रोशनी। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, तो कौन सी रोशनी देते हो? ज्ञान की रोशनी देते हो। दुनिया को तुम सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, नमक ग्रह पूजन करते हैं। 9 लाख सितारों में भी विशेष पूजन किसका होता है? नमक ग्रहों का। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। तुम सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वो ऊपर रहते हैं और तुम नीचे रहते हो। नीचे रहते हो तो फिर वो तुम्हारा यादगार ऊपर कैसे पहुंच गया? हाँ, नीचे रहते हो लेकिन नीचे रहते हुए भी ऊंची स्टेज में रहने वाले बनते हो। वो देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते थे, जिनके चित्र दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर दिखाए गए हैं, नाचते खेलते दिखाए गए हैं। वो नाच कौन सा है? ज्ञान डांस है, खुशी का डांस है। और वो कोई ऊपर छत में नहीं रहते हैं, लेकिन आकाश में रहने की बात नहीं है, लेकिन ऊंची स्टेज की बात है। तो तुम हो लकी सितारे, रहते तो उसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है। सबको सुख देते हो, जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। क्या कहा? हम बच्चों में भी लकी स्टार कौन? ये एक दूसरे को सुख देते हैं वो लकी स्टार, और दुख देते हैं तो उनको लकी स्टार नहीं कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय बनते हैं। जो आप समान बनाते वो लकी कहेंगे, जो सिर्फ सोते हैं और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, तो ये भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, राम सीता 2 कला कम हो गए तो उनको अनलकी कहेंगे। क्या कहा? अनलकी कब कहें? जब सर्विस करना बंद कर दें, डिससर्विस शुरू कर दें। तो राम किशोर ने कब डिससर्विस की है? जरूर यज्ञ के आदि में राम फेल हुआ। तो बजाय परमात्मा के वारसदार बच्चे निकालने के और क्या किया? डिससर्विस करके उनको उखाड़ दिया। तो कहेंगे कि राम नापास हो गया। नापास हो गया तो कहां की प्रारब्ध मिलेगी? सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है, वो भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं,
तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, गोप गोपियां, वो तो स्टूडेंट लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो। कैसे हो? गुप्त रहने वाले, गुप्त पुरुषार्थी है, गोपनीय। हाँ, वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला है। क्या? गोप और गोपी, सतयुग से कैसे निकला? हाँ, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता। होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियां बाहर के गांवड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे ना। महल में बाहर वाले तो आ न सके, कौन आएंगे? हैं? घर वाले ही होंगे माना। बाहर वाले कौन हुए और अंदर वाले कौन हुए? कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। कौन से युग के कृष्ण की बात है? संगम की कृष्ण की बात। अपने ही किले में खेलता है, अपने ही संगठन में रहता है, बाहर जमुना आदि पर नहीं जाता। भागवत तो कई फालतू बातें बैठ लिखी है, मटकी फोड़ी, गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, है कुछ भी नहीं। न कोई स्थूल मटकी फोड़ी, न कोई स्थूल में मक्खन चुरा के खाया। क्या पैसे नहीं थे? कृष्ण प्रिंस है तो उसको मक्खन खाने के लिए भी पैसे नहीं मिले क्या? वहां तो बड़े कायदे, यहाँ भी राजाओं के पास तो बाहर वाला जा नहीं सकता। क्या? राजाओं के पास तो कोई बाहर की राजाई वाला जा नहीं सकता। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है, आपके दुख कैंसिल कराए, सभी को सुख देते हैं। किनकी महिमा है? हाँ, दुख कैंसिल कैसे हो जाएंगे? हैं? कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख सब पाप कट जावेंगे, दूर हो जावेंगे। ये बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते? कौन सी पढ़ाई? कि माम एकम याद करो, एक कीमत पर चलो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। रावण क्या पढ़ाई पढ़ाता है? है? रावण माने अनेक सिद्ध, अनेक मत है ना, अपने कंट्रोल में पूरा चलेगा चलाएगा। और फिर ये भी, जब अपने कंट्रोल में पूरा चलाएगा नहीं तो होगा क्या? दूसरों कंट्रोल में चलना पड़े। तो ये बाप आकर नहीं पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते ये पढ़ाई? नहीं, ये मोस्ट लवली बाप है और सबसे अच्छी मत देते हैं। सबसे अच्छी मत कौन सी है? सबसे अच्छी मत है मन मना भव। क्या करो? मध्याजी भव भी नहीं,
मन मना भव, यह है सबसे अच्छी मत। मेरे में मन लगाओ, मेरे में मन लगाओ, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अपना मन के जो संकल्प हैं, मेरे मन के संकल्पों में डुबो दो। यानी तेरा मन का संकल्प भी कोई संकल्प मात्र से भी कोई विरोधाभास न हो। तो जब मन के संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं होगा, तो वाचा में और कर्मणा में तो विरोधाभास हो ही नहीं सकता। मुझे याद करो, स्वरक को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो तो सिर्फ विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। कौन? भक्ति मार्ग वाले वो सिर्फ कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। कैसे कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं? कि कृष्ण की 16 आदि में कृष्ण, मध्य में राजा विक्रमादित्य और अंत में दादा लेखराज ब्रह्म। तो आदि मध्य अंत किसका चक्र दिखाया? सिर्फ कृष्ण की 16 का दिखाया, परंतु अर्थ का भी पता नहीं। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं, और कोई मनुष्य आत्मा ये शंख दे नहीं सकती। शंख माना ज्ञान का शंख, ये मुख ही क्या हो गया? शंख हो गया। विष्णु थोड़े ये शंख देते हैं, और देते भी हैं मनुष्यों को। उन्होंने तो देवता को शंख दिखाई दिया है। वास्तव में शंख मनुष्यों को दिया है, मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो शंख किस लिए दिया है? शंख बजाने के लिए दिया है या रख देने के लिए दिया है? बजाने के लिए दिया है। तो क्या करो सुबह शाम? शंख बजाओ। तो जो शंख बजाते हैं वो फिर मनुष्य से देवता और विष्णु बनते। तो देखो कितना मीठा ज्ञान है, कितनी खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद किया। परंतु बच्चे सुदर्शन चक्र लगाते बहुत थोड़ा, तो बहुत थोड़े सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को कहो ना, बहुत बहुत थोड़े सुदर्शन चक्र घुमाने वाले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते हैं, और बाप तो रोज कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, और फिराते बिल्कुल नहीं। तो ये भी आशीर्वाद मिल जाते हैं क्या, कि फिराते नहीं हैं तो भी बाप क्या कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नहीं फिराते हैं फिर भी बाप कहते हैं, इसका मतलब आज नहीं तो कल सुदर्शन चक्र हमारा फिरेगा जरूर, जीते जागते रहे तो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।